ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जयामुतीरै नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का दसम अध्याय, इनका शीर्षक है यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार, श्लोक संख्या नंबर 11 और 12। सभी लोग कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। एवं साधारणम् देहम् अव्यक्त प्रभाव अपयम क विद्वान आत्मसात कृत्वा हन्ति जन्तु रेते असत। एवं साधारणं देहं
एवं साधारणं देहं
एवं साधारणं देहं
एवं साधारणं देहं
अव्यक्त प्रभवाप्ययम् अव्यक्त प्रभवाप्ययम् को विद्वान आत्मसात कृत्वा को विद्वान आत्मसात कृत्वा हन्ति जन्तून् रेतस असत अन्ति जन्तुरिते सता। एवं साधारणं देहं अव्यक्त प्रभवाप्ययम् को विद्वान आत्मसात कृत्वा हन्ति जन्तुरिते सता। अव्यक्तं प्रभवाप्ययम् को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तुरिते सता। माता जी शब्दार्थ इस प्रकार है। एवं इस प्रकार साधारणम सामान्य संपत्ति देहम शरीर को अव्यक्त अव्यक्त प्रकृति से प्रभव इस प्रकार से व्यक्त अवाप्ययम् पुनः अव्यक्त में लीन होकर क्योंकि तू मिट्टी है और तुम्हें मिट्टी में ही वापस मिल जाना है। कौन है? विद्वान ज्ञानी आत्मसात कृत्वा अपना कहते हुए हंती मारता है जंतुन बेचारे पशुओं को रिथे सिवाय असत द्रुत तथा मूढ़ जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यह शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्रकृतित्व तत्वों में विलीन हो जाता है। अथवा यह सबों का सर्वसामान्य गुण है। ऐसी परिस्थितियों में जो द्रुत होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा और उसे बनाए रखे हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहेगा। केवल मूढ़ ही ऐसे पाप कर्म कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नास्तिक लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते, वे तो भी जब तक कोई निष्ठुर नहीं हो पाता तब तक वह पशुओं की व्यर्थ हत्या क्यों करेगा। शरीर पदार्थ के संयोग का अभिव्यक्ति है। प्रारंभ में यह नहीं था कि किंतु पदार्थ के संयोग से इसका अस्तित्व हुआ। पुनः जब यह संयोग छिन्न भिन्न होगा तो इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। आदि में यह शरीर कुछ नहीं था और अंत में भी यह कुछ नहीं रह जाएगा। तो फिर जब वह व्यक्ति रूप में आता है तो कोई पाप कर्म क्यों करे। जब तक कोई द्रुत न हो तब तक ऐसा कर पाना संभव नहीं। होम ज्ञानतिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयीं ददापि स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुण वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपादादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका ठीक पहला एक श्लोक हम पढ़कर अनुवाद करते हैं। ग्यारहवां श्लोक इस प्रकार है। देह किम अन्न धातु स्वयं निषेक्तुर मातुर एव च मातु पितृ व बलिना क्रेतुर अन्यज्ञ सुना पीवा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जीवित रहते हुए यह शरीर उनके अन्नदाता का होता है। जीवित रहते हुए यह शरीर उनके अन्नदाता का होता है या स्वयं का अथवा पिता माता या नाना का। क्या यह बलपूर्वक ले जाने वाले का, इसे खरीदने वाले स्वामी का या उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं। और यदि शरीर जलाया नहीं जाता तो क्या यह उन कुत्तों या उन कुत्तों का होता है जो इसे खाते हैं। आखिर इतने सारे दबेदारों में असली दबेदार कौन है। इसका पता लगने की बजाय पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं। तो यहां पर इन श्लोकों में अब श्रीपाद नारद मुनि अपने उपदेश के द्वारा नल कुबेर को अब समझा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि वास्तविक इस देह का क्या परिणाम है। क्योंकि यहां पर नल कुबेर की जो स्थिति जो थी बड़ी ही विकट स्थिति थी। उन लोग अपने पिता के ऐश्वर्य को इस प्रकार भोग रहे थे कि अपने स्वामित्व की भावनाओं से वो तरह तरह के पाप क्रियाओं में लग चुके थे। तो इसके विषय में हमने पिछले क्लास में हमने चर्चा की है कि क्या क्या वो किस प्रकार के पाप क्रियाओं में लगे थे। तो जल क्रीड़ा में स्त्रियों के साथ वो नृत्य कर रहे थे, रमण कर रहे थे, और उसी समय वहां पर श्रीपाद नारद मुनि ने जब आकर देखा तो ये अवस्था जब उन्होंने देखा कि यहां पर इतने देवगण के जो कुबेर के पुत्र जो इतने बड़े पदवी में होने के बाद भी मगर इनका इस प्रकार का आचरण उचित नहीं है। तो ऐसे कहा गया है कि जब वरिष्ठों को जब आदर सम्मान नहीं देते हैं तो उनका धन ऐश्वर्य सब क्षीण हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर नारद मुनि ने इनकी कृपा को इन पर कृपा बरसाने के लिए पहले तो उन्होंने उनको ये सुझाव दिया, ये संदेश दिया। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम लोग जो सोच रहे हो कि ये जो तुम्हारा जो शरीर है ये तुम्हारी संपत्ति है, वास्तविक में ये तुम्हारा व्यर्थ ही तुम्हारी एक काल्पनिक बुद्धि के द्वारा तुम इस प्रकार सोच रहे हो। तो कहते हैं देह किम अन्य दतु स्वयं। तो पहले तो कहते हैं कि क्या ये देह तुम्हारा खुद का है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये देह जिसने प्राप्त किया है वो देह का मालिक कौन है। तो यहां पर स्वयं स्वयं यानी कि इस देह को जिसने धारण किया है ये उसका ये देह है। तो उत्तर आता नहीं, क्योंकि ये देह हमें किसी और से प्राप्त हुआ है। तो फिर आगे कहते हैं कि ठीक है निषेक्तुर निषेक्तुर यानी कि पिता के द्वारा, क्या पिता के द्वारा ये प्राप्त हुआ शरीर ये उस इसका मालिक उन पिता है इस शरीर का, क्या मातुर क्या इनका मालिक माँ है जो माँ 9 महीने तक गर्भ में शिशु को धारण करके रखती है, क्या इसका मालिक वह है। अब माता पिता भी इनके मालिक नहीं है। और फिर आगे कहते हैं एव मातु पितुर, जो इसके नाना जो कि इनके पुत्र, इनके नाना भी नहीं है ना इनके पुत्र है, जो इनको अग्नि के द्वारा इन्हें जलाकर भस्म कर देते इस देह को, और ना ही क्रेतुर सुना, सुना यानी कि कुत्ता, और ना ही ये कुत्ते के लिए कभी कभी शरीर को अग्नि से नहीं जलाते तो पशुओं को खाने के लिए कुछ लोग का इस प्रकार का रिवाज है कि वो पशुओं को फेंक देते हैं वही शरीर। तो क्या वो कुत्ते लोग इसके मालिक हैं। इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह रखकर यहां पर नारद मुनि बता रहे कि वास्तविक ये देह का मालिक कोई नहीं है, ना ही इसके माता पिता, इस देह के माता पिता इसके मालिक हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में जहां पर कपिल मुनि वर्णन करते हैं कि यह जो देह का जो वास्तविक ये देह जो प्राप्त होता है एक जीव को वो किस प्रकार प्राप्त होता है। तो कहते हैं कर्म दैव नेत्रेना जंतुर देह उपपद्यते स्त्रिय प्रविष्ट ऊर्ध्वम पुंसा रात्र क्षण श्रेया। तो कहते हैं कि कर्म दैव नेत्रेना ये देह उसे कैसे प्राप्त होता है एक जीव को, वो कर्म दैव नेत्रेना कर्म के दैवी इच्छा के अनुसार उस कर्म के चक्र के अनुसार जंतुर देह उपपद्यते उसे एक दूसरा देह प्राप्त होता है, और वो स्त्रीय प्रविष्ट उधरम स्त्री के उधर में वो प्रवेश करते हैं वही पुंसा रात्रे क्षण श्रेया। अब उस पुरुष के ऊर्जा के आधार पर वो स्त्री के घर में प्रवेश करते हैं। तो वो पुरुष को वो पुरुष के ऊर्जा में किस प्रकार प्राप्त होता है तो वर्णन करते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद इसके विषय में चर्चा करते हुए बताते हैं कि जब वर्षा ऋतु जब आती है तो उस वर्षा ऋतु के बूंदों में वही आत्मा इस पृथ्वी में आकर गिरती है, और उसी जल के अंदर जो आत्मा रहती है उसी जल को एक पौधा पीता है, और वो पौधा जब बड़ा होता है तो उस अन्न में वही आत्मा प्रवेश करता है, और उसी अन्न को जब पुरुष जब खाता है तब वो ऊर्जा के रूप में प्रकट होकर इस प्रकार वो संतान की उत्पत्ति होती है। तब यहाँ पर यह भी दावा जो किया गया है कि ये जो पिता का है नहीं, पिता भी इसके वास्तविक मालिक नहीं है और ना ही माता, जबकि माँ के गर्भ में 9 महीने तक वो रहता है लेकिन वो किस प्रकार उसका भरण पोषण होता है वो माँ को भी नहीं पता होगा। इसके विषय में वर्णन करते देहम ना, जिसके विषय में इस प्रकार कहते हैं कि वो गर्भ के अंदर जब वो शिशु जब प्रवेश करता है तो करीब 10 दिन के बाद एक गोला गोल आकार के रूप में एक मांस का टेला बनता है और फिर 1 महीने के बाद उसके मस्तक तैयार होते, हाथ पैर निकलते हैं और 3 महीने के बाद उसकी उंगलियां निकलती हैं, उसके हाथों में जो उनके उंगलियों में और पैरों में जो नाखून है वो बढ़ता है और 4 महीने के बाद उनकी हड्डियां बनती है, हड्डियों में फिर शरीर के अंदर रक्त का उत्पादन होता है और इस तरह 5 महीने में उन्हें भूख प्यास लगना शुरू होता है और 6 महीने में वो जो माता जो खाती है उसको वो ग्रहण करने का उसे प्रयास करता है और माँ कुछ अगर उत्पटान चीज खाती है तो शिशु को दर्द या शिशु को वहां पर ठेस पहुंचता है और इस तरह उसी गर्भ के अंदर ऐसे बताया गया है कि 7वें महीने में अगर वो बाएं तरफ अगर हिलता होगा तो ऐसे माना जाता है कि कन्या होगी और दाएं तरफ अगर वो बच्चा हिलेगा तो ये माना जाता है कि पुत्र होगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको तात्पर्य में बताते, यानी सोनोग्राफी का भी जरूरत नहीं है। जय श्री श्री राधा भगवान जगन्नाथ बोलते सुभद्रा। तो इस प्रकार पूरे वैज्ञानिक तौर से कपिलदेव मुनि अपनी माता देहूति को समझाते हैं कि इस गर्भ के अंदर जो शिशु जो जन्म लेता है वो कैसा जन्म लेता है। तो इस आधार से ये शिक्षा मिलता है कि इसके ना ही मालिक माँ है ना ही पिता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने जब चतुर कुमार को जब उत्पन्न किए तो उनको उत्पन्न कर जब उत्तरदायित्व स्वीकारने के लिए कहा कि अब तुम ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करो तो उन्होंने कहा नहीं हम ब्रह्मचारी ठीक है। तो तब उस समय बड़ा क्रोध आया ब्रह्मा जी को, जिस क्रोध से रुद्र का अवतार रुद्र प्रकट हुए उनकी उनके 2 भ्रुगुटी के बीच से। तो यहां पर चतुर कुमार ने अपने पिता के आज्ञा का अवहेलना किया तो उसे क्या शिक्षा है कि यहां पर चतुर कुमार जो जानते थे कि वास्तविक आत्मा का स्वार्थ किस में छुपा हुआ है और वो जानते थे कि इस देह का मालिक कौन है और ऐसे जानते हुए उन्होंने अपने पिता का भी बात नहीं माने और संपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में वो तलीन हो गया। और इसी प्रकार उन्होंने ये विचार किया कि हम ब्रह्मचारी रहकर भगवान की सेवा करेंगे। तो ये यहां पर ये शिक्षा क्या है, वहां पर श्लोक प्रभुपाद भी लिखते हैं तात्पर्य में, उसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि पिता का पहला पुत्र और पहली आज्ञा कोई अवहेलना किया तो परंपरा वहां से ही चला आ रहा है। तो वैसे जो इस देह का वास्तविक स्वामी है कौन, तो इसमें से कोई नहीं है और ना कि इस देह का मालिक वो व्यक्ति है जो इसे बलपूर्वक खींच कर लेकर जाता है। तो जैसे यमदूतगण उसे बलपूर्वक उस व्यक्ति को उस शरीर से उसे खींचा जाता है और वो निसहारा चिल्लाते हुए रो देता है मगर कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। तो वास्तविक जो मरने वाला जो व्यक्ति होता है वो यमदूत को देखकर घबरा जाता है। और ऐसे कई किस्से हैं हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर माधवानंद प्रभु, उन्होंने भी अपने साक्षात्कार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी इस बात को बताए थे कि जब वो उनका भी जब बाल अवस्था था, जब युवा अवस्था जब था, उस समय उनका बड़ा तबीयत खराब हो गया था और जिस कारण से अब उनका देह छूटने ही वाला था और उन्हें पकड़ने के लिए तीन भयंकर व्यक्ति आए थे। तो इन्होंने देखकर घबराते हुए अपनी दादी के तरफ मुख कर दिया और कहने लगे कोई आया है मुझे लेने। तो दादी कहने लगे तुम राम राम बोलते रहो। तो इन्होंने राम 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 बोलते रहा, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद गायब हो गया। तब उन्होंने कहा तब से मैंने राम की भक्ति शुरू कर दी। तो वो जो मृत्यु के समय पर यमदूत का दर्शन उसी को होता है जो व्यक्ति मरने वाला है। तो जो इसे बलपूर्वक खींचता है, इसे खींचकर लेकर चला जाता है, वो इसका मालिक है? तो कहते नहीं, वो भी नहीं है। और ना ही वो कुकुर श्रीगाल, ना ही वो इसके मालिक है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में वर्णन करते, संसारे शरीरे पड़िया रोहिले, कुकुर श्रीगाल सब आनंद होइले, पतंग विहंग सब विहार कोरीले, महोत्सव करी अमार देह लोही। कहते हैं संसार शरीर, ये जो शरीर जब छूट जाता है, ये जो व्यर्थ जो शरीर जो है मरने के बाद, ये व्यर्थ शरीर इसे शमशान भूमि में डाल दिया जाता है, पड़िया रोहिले, और उसी के ऊपर पतंग विहंग से विहार कोरीले, उसी के ऊपर तरह तरह के कीड़े मकोड़े उसके ऊपर रेंगने शुरू करते हैं, और कुकुर श्रीगाल सब आनंद होइले, और उसे कभी कुत्ता या कभी श्रीगाल आकर उसे खाने का आनंद खाकर आनंद लेता है, महोत्सव करी, और ये उन लोगों के लिए एक उत्सव है उसी देह को खाके, और अंततः गतवा इस देह का यही परिणाम है। तो ये भी इनके मालिक नहीं है। तो यहां पर नारद मुनि का मुख्य जो कहने का जो तात्पर्य यह है कि अपने स्वामित्व की भावनाओं को त्यागते हुए जब कोई अपने जीवन को बिताता है तब वो सबसे उचित मार्ग माना जाता है। यानी कि हमें हर वस्तु को सेवा की भावनाओं से जब हम हर वस्तु को देखेंगे तब जाकर हम उचित तरीके से अपने जीवन को बिता सकते हैं। यहां पर नल कुबेर की जो भावना जो थी वो इस प्रकार थी कि स्वामित्व की भावना होने के कारण सारी संपत्ति को वो अपना स्वामित्व की भावनाओं के देखने के कारण वो भोगने की दृष्टि से देख रहे थे। और इस जब व्यक्ति वो भोगने की दृष्टि जब रखता है तो स्वाभाविक है कि वो पाप क्रियाओं में नियुक्त हो जाता है। तो मुख्य जो यहां पर जो देह के प्रति जो यहां पर नारद मुनि जो चर्चा करते हुए ये समझा रहे कि जब देह ही तुम्हारा नहीं है तो बाकी क्या बचा। जो देह जो है ये सब जन्म लेते ही व्यक्ति का पहला स्वामित्व की भावना इस देह पर आता है, और देह के बाद फिर उस देह के साथ जो जो जुड़ा हुआ उसके प्रति उसका स्वामित्व की भावना आती है। तो जब जो जड़ जो है वो है देह, इस देह को अगर कोई अपना समझ बैठा है तो निश्चित है कि देह से जो जुड़ा है वो भी वो अपना ही समझेगा। इसलिए इस भौतिक जगत में जो देह आसक्ति जो है यही सारे पाप क्रियाओं का मूल जड़ या कारण बनता है। और श्रीमद् भागवतम के नवे स्कंद में जहां पर वशिष्ठ मुनि जब आए थे निमि महाराज के पास यज्ञ हवन करने के लिए, तब उसी समय देवगणों ने उन्होंने निवेदन किया कि आप कृपा करके स्वर्ग में आकर यज्ञ हवन करके फिर आप जाइए। तो वशिष्ठ मुनि ने निमि महाराज से आज्ञा लेकर निकल पड़े और जब गए तो कह दिए थे जल्दी आएंगे, मगर आने को देरी हो रहा था और पुरोहित लोग कह रहे कि यज्ञ का समय बीतता जा रहा है, अब चालू कर देना चाहिए। मगर तत्पर भी निमि महाराज वशिष्ठ मुनि के इंतजार कर रहे थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि नहीं आए, तब उन्होंने यज्ञ हवन शुरू कर दिया और उसी समय वशिष्ठ मुनि उसके पश्चात आए और जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि यज्ञ हवन शुरू हो गया। तो वशिष्ठ मुनि को एक अपमानित महसूस हुआ कि मुझे बुला, मेरे गैर हाजिरी में यज्ञ हवन कर दिए। तो ये अपमान जब उन्हें महसूस हुआ तो उन्होंने निमि महाराज को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा देह नष्ट हो जाए। और उसी क्षण उनका देह नष्ट हो गया और फिर निमि महाराज ने भी श्राप दिया कि तुम्हारा भी देह नष्ट हो जाए। दोनों जन ने एक दूसरे को श्राप देकर देह नष्ट कर दिए। तो अब राजा की पदवी में बैठने वाला कोई नहीं था, तो अब निमि महाराज का देह नहीं है, अब निमि महाराज सूक्ष्म शरीर के साथ में है। तो देवगण आकर निमि महाराज को निवेदन किए कि आप देह को पूरा धारण करिए। तब निमि महाराज कहने लगे, नहीं, मुझे वो देह नहीं चाहिए, उस देह में केवल दुख शोक भय भरा हुआ है। वो कहने लगे, देहम ना अरुक्षेहम दुख शोक भयापहम सर्वत्र यथोर मृत्युर मत्स्यानाम यथोगता। तो कहते हैं कि वो जो देह, देहम ना अरुक्षेहम, मुझे वो देह पुनः नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो कहते जिस देह में दुख शोक भय भरा हुआ है, दुख यानी वर्तमान काल की जो स्थिति से व्यक्ति पीड़ित है, शोक जो भूतकाल के स्थितियों से पीड़ित है कि वो वस्तु अब मेरे पास नहीं है उसके विषय में सोचकर, और भय भविष्य के विषय में चिंता करते हुए ग्रस्त है। दुख को शोक भय, ये तीनों तरीके से, ये जो तीन प्रकार के जो क्लेश उसे निरंतर सताने के कारण वो कहने लगे कि मुझे वो देह पुनः नहीं चाहिए, क्योंकि हर समय मृत्यु का भय बना रहता है। जिस प्रकार मत्स्यानाम, जिस प्रकार मच्छी जो है वो निरंतर जल के अंदर रहती है लेकिन निरंतर उसके मन में एक भय बना रहता है, वो हमेशा चंचलपन रहती है। मच्छी हमेशा सरोवर के अंदर रहने के बाद भी उस मच्छी के मन में एक निरंतर भय बना रहता है, वैसे ही ये देह जैसे ही किसी को जिसे प्राप्त होता है उसी समय ये तमाम प्रकार के समस्याएं उसको ग्रस्त कर लेता है। और इस तरह यहां पर निमि महाराज स्वयं कह रहे हैं, मुझे वो देह नहीं चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो वास्तविक जानता है कि इस देह में कितने प्रकार के क्लेश हैं। तो हर इसलिए बताया गया है कि ये देह जब हमारा नहीं है तो देह के साथ जुड़ा हुआ वस्तु कैसे हमारा हो सकता है। और गोपीगण इसके विषय में वर्णन करते हुए उस बताते हैं कि निशम त्यजंती गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा आदित्य विद्या आचार्य मृत्विजो दत्त दक्षिणाम खगस्व वित्त फलम वृक्षम भुक्त्वा चातितो घृणन दत्तम मृगस्तारण्यम जरा भुक्त्वा रथम स्त्रिया। स्वयं गोपीगण इस प्रार्थना से यह समझाते हैं कि यह देह से जो बना हुआ जितने भी वस्तु है कितना क्षणिक है। वो कहते हैं जो देह से संबंधित वस्तु उसकी स्थिति किस प्रकार है, तो उदाहरण देकर, आठ उदाहरण देकर समझाते हैं कि कितना क्षणिक संबंध है। तो कहते हैं निशम त्यजंती गणिका, एक वैश्या के साथ एक पुरुष का संबंध कब तक रहता है? केवल धन तक। जैसे ही धन प्राप्त होता उसका उसके साथ संबंध खत्म। अकल्पम नृपतिम प्रजा, एक राजा का प्रजाओं के साथ संबंध कब तक रहता है, जब तक प्रजा देख रही है कि राजा ठीक है तब तक उसका संबंध बना हुआ। जैसी राजा अब राजगद्दी में कुछ अगर उत्पतान कार्य करते तो प्रजा उसे हटा देते हैं। आदित्य विद्या आचार्यम, एक गुरुजी का विद्यार्थियों के साथ संबंध कब तक रहता है, जब तक शिक्षा प्राप्त होता है तब तक, जैसी शिक्षा खत्म तो वहां पर उनका संबंध भी खत्म। ऋतविदो दत्त दक्षिणाम, एक पुरोहित यज्ञ हवन करने आता है तो उनका संबंध वहां पर कितना समय तक वो रहता है, वो यज्ञ हवन करता है जैसी दक्षिणा आया तो उसी समय वहां पर उनका यज्ञ हवन भी खत्म। और खगस्पवित्त फलम वृक्षम, एक वृक्ष में एक चिड़िया जो बैठती है वो कब तक उस वृक्ष में बैठती है, जब तक उस वृक्ष में फल बना हुआ है, जैसी वो फल खत्म तो चिड़िया भी उस वृक्ष को छोड़कर चली जाती है। फिर कहते हैं भूत्वा चाती तो ग्रहण, एक मेहमान जब घर पर आता है तो कितने समय तक रहता है, थोड़े समय के लिए, जैसे उनका वहां पर वार्ता खत्म हुआ तो अब मेहमान चला जाता। अब मेहमान ये तो नहीं कहता है कि मैं बोरिया बिस्तर साथ में लाऊं यहीं रहूंगा, वो तो नहीं कहता है, तब अगर ऐसे कहेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो यहां पर केवल इतना छोटा संबंध। और फिर दत्तम मृगश्चा तथा अरण्याम, एक जंगल में जो हिरण जो रहता है वो कब तक रहता है, जब तक वो जंगल हरा भरा है, जैसे जंगल में आग लगा हिरण कूद के चला जाता है, उस हिरण का जंगल के साथ कोई संबंध नहीं। जरा भुक्त्वा रता स्त्रियां, एक स्त्री कब तक उनके साथ युवा अवस्था बनी रहता है, बहुत थोड़े समय के लिए, जैसी वो युवा अवस्था खत्म हुआ बुढ़ापा आते ही सारा आकर्षण खत्म। ठीक इसी तरह ये भौतिक जो जितने भी ये जो आठ प्रकार के उदाहरण हैं, इस उदाहरण से गोपीगण ये शिक्षा दे रहे कि इस भौतिक शरीर के साथ जो भी कुछ जुड़ा है ये वैसे ही क्षणिक है, वैसे ही खत्म हो जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं रहेगा। लोग कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले इस देह में शाश्वत रूप में जीने के लिए, लेकिन देह एक ना एक दिन छूटने वाला है। यहां तक कि हिरण्यकश्यपु ने, उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी, स्वर्ग के 100 वर्ष तक उन्होंने अंगूठे में खड़े रहकर तपस्या किया, इसलिए कि मैं अपने देह को अमर कर दूं। जब ब्रह्मा जी आए उनको वर देने, तो ब्रह्मा जी को जब उन्होंने ये वर मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे क्षमा करो, मेरा भी मृत्यु है, मेरा भी देह खत्म होने वाला है, मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं। तो उन्होंने ये वर कहा कि यदि दास्यति अभिमतान वरान में वर दो तमा भूतेश्वरपत पृष्ठेभ्यो मृत्युर्मा भूम मम प्रभु, मेरा मृत्यु कभी ना आए, कुछ ऐसा सुझाव के लिए फिर उन्होंने ये वर मांगा कि मेरा मृत्यु अंबर में ना हो, भूमि में ना हो, अंदर ना हो, बाहर ना हो, किसी अस्त्र शस्त्र से, तभी सभी तरह से उन्होंने शर्त मंजूर कर लिए थे, लेकिन सारा शर्त उनका व्यर्थ बेकार गया, उनकी मृत्यु ध्रुव थी। तो मृत्यु यानी कि इस भौतिक देह का अंत, तो ये तो निश्चित है, ये भौतिक देह का अंत निश्चित है, इसलिए विद्वान व्यक्ति जानता है कि ये देह को कैसे देखना चाहिए। जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं, एक एक पदार्थस्तु त्रिविध भौति वृक्षता, पुम पुम पुनः पा कामी भी मांस योगी भी कामी भी स्व भी। वो बताते हैं कि इस देह को किस प्रकार विद्वान व्यक्ति देखते हैं, यहां पर तीन लोग को देखने का नजरिया बताया इस देह के प्रति। तो वो तीन लोग कौन है, एक है ब्राह्मण या एक पंडित और एक स्व और कामी, यानी कि एक भोक्ता भोक्त दृष्टि से देखने वाला एक कामी। ये तीन लोग इस भौतिक देह को किस प्रकार देखते हैं, तो बताते हैं कि सड़क से एक युवक युवती जा रही है और उस युवती को स्व भी कुत्ता जब देखता है तो कुत्ता इस भाव से देखता है कि यहां मेरा खाने का नाश्ता जा रहा है, और उसी को अगर एक कामी देखता है तो केवल उसे भोगने की दृष्टि से देखता है, और पंडित जब देखता है या एक ब्राह्मण जब देखता है तो वो इसी दृष्टि से देखता है पुनपह, ये तो केवल उसी हड्डी और रक्त से बना हुआ ये शरीर है जिसमें केवल मल मूत्र भरा हुआ है, और इस दृष्टि से वो इस देह को देखता है। जिस देह का वास्तविक अंतिम गति यही है, तो प्रश्न यह उठता है कि तो ये देह कब तक, किस प्रकार इस देह को हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो देह जो है, विद्वान व्यक्ति इस देह को जब सेवा के भावनाओं से जब उपयोग करता है तब ये देह वास्तविकता अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है, एक आत्मा अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जब वो देह को ठीक ठीक उपयोग करता है। तब जैसे उदाहरण दिया जाता है कि वेनो संघर्ष जह वन्नीर धत्वा श्याम्यति तत्वनम एवं गुण व्यवस्थित जो तेहम संपायते तत्क्रिया। तो कहते हैं वेणो संघर्ष जो वहनीर, जंगल में जब दो लकड़ी का जब घर्षण होता है तो वो घर्षण होने से उसमें से अग्नि निकलती है, उस अग्नि से पूरा जंगल में आग लग जाता है। ठीक इसी तरह ये जो देह है, ये देह को अगर जब सेवा की भावनाओं से जब उपयोग किया जाएगा तब निश्चित रूप से, जबकि वही लकड़ी से अग्नि निकला और वही अग्नि ने पूरे जंगल को जलाकर भस्म कर दिया, ठीक उसी तरह कृष्ण भावनामृत की अग्नि जब इस शरीर से जब प्रकट होगी तो हमारे पाप रूपी क्रियाओं को पूरा जलाकर भस्म कर देता है। और वैसे देह को जब कोई सदुपयोग करता है तब वो सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, और इसी बात की पुष्टि यहाँ पर नारद मुनि कर रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति जो होता है वो कभी इस प्रकार के कदम नहीं बढ़ाएगा। ये मूर्ख व्यक्ति ही अपने शरीर को अपना मान बैठता है और तरह तरह के पाप क्रियाओं में लग जाते हैं। तो इसलिए जब अपने शरीर को जब अपना मान बैठते हैं तब व्यक्ति की दृष्टि कैसी रहती है, हर वस्तु को जड़ पदार्थ के रूप में देखते हैं और सारे चेतन वस्तु को भी जड़ पदार्थ पर देखने के कारण वो पशुओं को भी इस प्रकार हत्या करते कि ये भी कोई जड़ वस्तु है। लेकिन जब कोई सेवा की दृष्टि से जब देखते हैं तब वो हर वस्तु को, जड़ वस्तु को भी चेतन रूप में देखते हैं। और यही अंतर था हिरण्यकशिपु और प्रह्लाद का। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रह्लाद हर जगह भगवान का दर्शन कर रहे थे, सभी स्थान पर है, यतो यामी ततो नरसिम्हा। लेकिन नरसिंह भगवान का दर्शन यहाँ पर हिरण्यकशिपु नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने जब प्रहार किया खंभे को तो उस खंभे से फटकर स्वयं भगवान निकले, लेकिन तत्पर भी हिरण्यकशिपु भगवान को देखने के बाद भी ये सोच रहे कि पता नहीं किसने एक खंभा बनाया, खंभा बनाते वक्त किसी जानवर को अंदर रख के प्लास्टर कर दिया, उनको मैं बाद में देखूंगा, पहले इनसे निपटता हूं। अब हिरण्यकशिपु भगवान को देखने के बाद भी वो जड़ रूप में देख रहे थे, सीइंग द स्पिरिट हैज अ मैटर। और जो भक्तगण होते हैं वो सीइंग द मैटर एज अ स्पिरिट। और यही वास्तविक, जब कोई अपनी दृष्टि को इस प्रकार बदलता है तब जाकर उनकी दृष्टि पवित्र होती है, तब जाकर यद यमशाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम प्रेमांजन छुरीता भक्ति विलोचने ना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तब तब जाकर जब उन्होंने अपने आंखों में जब सेवा रूपी अंजन या प्रेम रूपी अंजन को जब लगाते या भगवान की भक्ति के अंजन को जब वो स्वीकारते हैं, तब वो निरंतर अपने हृदय में श्याम सुंदर का दर्शन करते रहते हैं। लेकिन अब हमारी अवस्था क्या है, एक भक्त बता रहे थे, श्यामानंद प्रभु बता रहे थे, अब हमारी अवस्था यह है, कामांजन छुरीता भुक्ति विलोचने ना, कि अब हमने काम के अंजन लगाए हैं तो हर वस्तु को केवल भोग दृष्टि से देखते हैं। तो वैसे भावनाओं से अगर रहित होना है तो यहां पर प्रथम जो शिक्षा जो है वो यह है कि ये देह ही मेरा नहीं है तो बाकी बचा क्या। और ऐसी भावना अगर रहेंगे, अगर कोई अपने जीवन को बिताएगा तो निश्चित रूप से वह हर स्थान पर भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण। कोई प्रभु जी एनी कमेंट, कोई प्रश्न किसी का? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।